ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता की। साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने वाला साइप्रस 23वां देश बन गया है। श्री मोदी सम्मान के लिए श्री निकोस का आभार व्यक्त किया।
The Grand Cross of the Order of Markarios 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।
यह सम्मान केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है।
इससे पहले निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और सहयोग की नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे, जिसमें विशेष रूप से व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग शामिल होगा। बाद में श्री मोदी और श्री क्रिस्टोडोलिडिस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निकोसिया टाउन हॉल का दौरा करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति निकोस ने लेमिसॉस में भारतीय और साइप्रस के शीर्ष उद्यमियों के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज मेलन में भाग लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस के साथ व्यापार दोनों देशों के बीच बेहतर होते आर्थिक संबंधों का संकेत है।
साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहाँ से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार 150 मिलियन डॉलर पहुँच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है।
सरकार ने आज जनगणना कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि जनगणना 1 मार्च 2027 में कराई जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। ये भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और देश के स्वतंत्र होने के बाद 8वीं जनगणना होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे सशक्त बनाना जरूरी है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में आज विज्ञान भवन में राहत आयुक्तों और राज्य आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही।
विगत 2 वर्ष से हमने राहत और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के वर्कशॉप को, उनकी मीटिंग को एकत्रित कर एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर ढेर सारी एजेंसियों को एकत्रित कर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विचार का ये मंच बनाने का काम किया है।
अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज दोपहर नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय गृह सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज पार्थिव शरीर डीएनए मिलान के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है। विजय रूपाणी की 12 जून को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिवार पार्थिव शरीर लेकर रवाना हो गया है, जिसे राजकोट ले जाया जा रहा है। इसराइल और ईरान के बीच युद्ध आज चौथे दिन भी जारी है। युद्ध रोकने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। इसराइल में ईरान के हमलों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जबकि 380 लोग घायल हुए हैं। दूसरी ओर इसराइल के हमलों में अब तक ईरान के लगभग 224 लोगों की मौत हो चुकी है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर बाद के कारोबार में 0.8% की तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 641 अंक की बढ़त के साथ 81,760 अंक पर और निफ्टी 213 अंकों की तेजी लेकर 24,931 अंकों पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी तट पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में अगले 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।